चलो वर्स 24 से शुरू करें। यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं कि जैसे सूरज का जो एसेंशियल तत्व है, जो उसका नेचर है, वो क्या है? चमकना, ल्यूमिनोसिटी। जो पानी का तत्व है वो क्या है? ठंडापन, है ना, ठंडा है। और जो आग है उसका तत्व क्या है? गर्मी। इसी तरह जो आत्मन है उसका तत्व क्या है कि उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है कि वो हमेशा है, इटर्नल। ये तो पहली बात, और सबसे बड़ी बात, इटर्नल मतलब हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, है ना। जो सत्य है मतलब सत्य ही आत्मन है, जैसे हमने सत्य के बारे में भी बोला, जो था, है और रहेगा और कभी भी बदलता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में वो बदलता नहीं है। चाहे आपकी सृष्टि बहुत सुंदर चल रही हो यहाँ पे, चाहे बाढ़ आई हुई हो, चाहे कोरोना हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही हो, तब भी वो जो आत्मन है वो सेम ही रहता है, वो हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। एवर कॉन्शियस, वो हमेशा जागृत है, उसमें हमेशा अवेयरनेस है, जो आत्मन है। जैसे हमें कभी अवेयरनेस होती है किसी चीज़ की, कभी नहीं होती। हम कभी सोए होते हैं, कभी जगे होते हैं, है ना, कभी हम किसी चीज़ में खोए होते हैं, कभी मुझे ध्यान होता है कि हाँ मैं एक फ्रेंड हूँ, कभी ध्यान होता है मैं एक माँ हूँ, कभी ध्यान होता है मैं एक पत्नी हूँ, पर हमेशा नहीं होता, या अपना खुद का ही बोध हमेशा नहीं होता। लेकिन जो आत्मन है वो एवर कॉन्शियस है, उसको हमेशा बोध रहता है, हमेशा बोध में है। ऑल परवेडिंग, वो हर जगह पे है, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ वो आत्मन नहीं है। फिर से एवर कॉन्शियस उन्होंने रिपीट कर दिया है। ब्लिसफुल, वो हमेशा आनंद में है जो आत्मन है, वो किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है आनंद के लिए। उसको कोई ना पैसा चाहिए, ना उसको चाहिए कि दूसरे लोग उसे प्यार करें, या उसको कुछ कंफर्ट्स चाहिए खुश होने के लिए, नहीं, वो हमेशा आनंदित है कुछ भी हो या ना हो। और प्योर एग्जिस्टेंस मतलब वो ही एक है जो बोल सकते हो कि सबसे शुद्ध अस्तित्व का सबसे शुद्ध रूप है, ठीक है। तो ये है आत्मन, तो ये इसका क्या है, स्वभाव, आत्मन का स्वभाव बताया जा रहा है। फिर वो क्या कहते हैं कि ये जो आत्मन है ये इतना निर्मल है, इतना शुद्ध है कि इसको शुद्धि की ज़रूरत नहीं है। देखो, उस आत्मन को शुद्धि की ज़रूरत नहीं है, शुद्धि की किसको ज़रूरत है? जब हम बोलते हैं साधना की ज़रूरत है शुद्धि के लिए, किसको शुद्ध करना है? इस शरीर को और इस मन को, है ना, क्योंकि ये अशुद्ध हैं। और शुद्धि के ऊपर ये अशुद्धियाँ क्योंकि आरोपित हो गई हैं, इसलिए क्या लगता है, वो जो मैं हूँ, वो जो आत्मन हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी अशुद्ध हो गया हूँ, क्योंकि वो आरोपित हो गया उसके ऊपर। देखो फिर उन्होंने वही वाला यहाँ पे एग्जांपल दिया है, गंगा वाला, तो हम इसमें जाएंगे नहीं। जैसे वो कह रही हैं कि कोई, कई लोग मुझे पूछते हैं, अरे गंगा में डिप लेने से क्या होगा, क्या मेरे सारे पाप धुल जाएंगे? तो कहते हैं कि फिर अगर तुम यही मानोगे कि नहीं धुलेंगे तो नहीं धुलेंगे, और अगर तुम मान लोगे धुल जाएंगे तो धुल जाएंगे, है ना। तो अब हम इसको वही गधे वाले एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। क्यों क्यों धुल जाएंगे अगर मान लोगे? क्योंकि पाप है ही नहीं। कहाँ पाप नहीं है? आत्मन में पाप नहीं है, है ना, आत्मन हमेशा शुद्ध है। तो मैं कैसे शुद्ध हुआ? क्योंकि मैं ही आत्मन हूँ इसलिए। लेकिन जब तक मैं अपने आप की आइडेंटिफिकेशन इस शरीर और मन से रखूँगा, तब तक मुझे हमेशा ये लगता ही रहेगा कि मेरे अंदर अशुद्धियां हैं, है ना? फिर से आगे वो कह रहे हैं, आत्मन इज सेपरेट फ्रॉम द माइंड, योर प्रॉब्लम इज दैट यू बिकम द माइंड एंड देन गेट एंटैंगल्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन द होप दैट समवन विल गिव यू हैप्पीनेस, है ना। यही तो गलती हुई है, बचपन से यही गलती करते आ रहे हैं, और हमें बचपन से सिखाया भी यही गया है ना। आप देखो, जैसे माँ है, वो शुरू में तो हम अपनी मदर पे डिपेंडेंट होते हैं, खाने के लिए रोएंगे कुछ भी, और हमें लगता है कि अगर माँ दुखी हो जाएगी तो एक नेचुरल होता है कि माँ को खुश रखना है तभी खाना मिलेगा। एक्चुअली क्या है, हम अपनी सर्वाइवल नीड्स की वजह से दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, और फिर हमारा वही एक पैटर्न बन जाता है। हमको लगता है कि हम हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, दूसरे खुश होंगे तो हम खुश हैं, दूसरे हमें प्यार करेंगे तो हम प्यार के लायक हैं, दूसरे हमें इज्जत देंगे तो हम इज्जत के लायक हैं। सर्वाइवल में हाँ दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल नीड्स में, मतलब वो जो पहले हम बात कर रहे थे काम और अर्थ, वहीं पे जो हमारे लोअर तीन चक्रास से रिलेटेड है, लेकिन उसके ऊपर जाना है तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, कहीं पर भी नहीं हो, लेकिन हम उसी में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो उसी में फंसे हुए हैं, वो उसके बाहर आ ही नहीं पाते। इसका मैं आप लोगों को एक और उदाहरण देती हूँ, आप लोगों ने सुना हो, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े हाथी होते हैं, बहुत बड़े, उनको चेन्स में बांधा होता है, जो महावत होता है वो उनको चेन में बांधा हुआ होता है और वो लेके चल रहा होता है। अब कभी सोचा है आपने कि इतना बड़ा हाथी जो इतना पावरफुल है, क्या उसको किसी लोहे की चेन से बांधा जा सकता है? इतना वो स्ट्रांग है लेकिन फिर भी वो बांधा होता है, उसका रीज़न क्या है? जिस दिन हाथी चाहे, देखो गधे की तो चलो चेन, वहाँ पे चेन है ही नहीं, हाथी की चेन है, लेकिन वो इतनी लाइट है और हाथी में इतनी शक्ति है कि वो एक सेकंड में तोड़ सकता है, और ये सब महावतों को पता होती है ये बात। तो वो क्या किया जा रहा है, जब हाथी एकदम बच्चा होता है ना, एकदम छोटा, तो क्या किया जाता है, उसको एक बड़ी भारी चेन में बांधा जाता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है तो उसमें ताकत नहीं होती उस चेन को तोड़ने की। वो बहुत कोशिश करता है, हाथी बहुत बार कोशिश करता है, जो छोटा बच्चा होता है वो चेन तोड़ने की। तो क्या होता है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी कंडीशनिंग हो जाती है कि मैं ये चेन नहीं तोड़ सकता, ओके? और इसीलिए एक पॉइंट आता है जब वो हाथी इतना बड़ा हो जाता है कि वो अब अपनी चेन तोड़ सकता है, लेकिन फिर से वही माइंड में वो जो बंध गया है कि मैं बंधा हूँ, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो कभी कोशिश ही नहीं करता तोड़ने की। तो यही ट्रिक जो हाथी के ऊपर लगाई गई है, यही हमारे माइंड के ऊपर भी हो गई है, है ना? तो हम दूसरों पे हर चीज़ पे डिपेंडेंट हो गए हैं, माइंड से एंटैंगल होके। अब जैसे वो कह रही है यहाँ पे, हस्बैंड इज एनस्लेव टू द वाइफ एंड वाइस वर्सा। तो वो बता रही हैं कि एक बार किसी ने आके बोला उनको कि मेरी पत्नी तो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ध्यान रखती है। तो गुरुमा ने क्या बोला, और वो तो है भी बहुत मज़ेदार, वो कहती है मैंने उसको बोला तू एक काम कर, उसको पैसे देने बंद कर दे, उसको बाहर ले जाना बंद कर दे, उसकी जो भी चाहती है कुछ भी मत कर, और फिर मुझे आके बताना तुझे प्यार करती है कि नहीं करती है कि नहीं। कहती पहले ये सारे के सारे काम कर दो, फिर आके मुझे बताना। और ये सच है कि नहीं है, आप खुद सोच लो। आप अब भी सोचो कि आपको कौन प्यार करता है। आपको लगता है कि ये मेरा पति बहुत प्यार करता है, या मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है, या ये प्यार करता है, और आप ये सारे जो चीज़ें हैं ना उसके ऊपर अप्लाई करके देख लो। और आप खुद भी यही करोगे, आप जो है, अगर आपको लगता है आप अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करते हो, या आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो, आप ये 10 चीज़ें लगा लो यहाँ पे साथ में, कि आपका बच्चा आपके साथ कल ये करेगा, हस्बैंड ये करेगा, तो आप कितना प्यार करोगे? नहीं करोगे, कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सारा क्या है, ये कंडीशनल है, ये रिलेशनशिप है, ये माइंड और बॉडी से एसोसिएटेड है। जो भी चीज़ें माइंड और बॉडी से एसोसिएटेड होती हैं वो कंडीशनल होती हैं, प्लीज़ रिमेंबर। ये जो माइंड, मन और ये शरीर में सब कुछ कंडीशनल है। यहाँ पे कंडीशनल का क्या मतलब है, ये जिस उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तुम मेरे लिए करो, यहाँ पे सब कुछ लेन देन में है हर चीज़। तभी तो तुम देखो ना कितनी प्रॉब्लम्स, लोग क्या कंप्लेन करते हैं, अरे मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मतलब ये एक इतनी कॉमन कंप्लेंट है जो हर कोई अपनी लाइफ में देख सकता है। हमने खुद ने भी बोला होगा बहुत बार बहुत लोगों के लिए, है ना, हमने उनके लिए ये किया वो नहीं करते, हम उनकी सुनते हैं वो नहीं सुनते, हमने ऐसा करा, क्या है ये वही है, कंडीशनल है। ये कौन करता है? माइंड, क्योंकि माइंड बड़ा कैलकुलेटिव होता है, माइंड हिसाब रखता है हर चीज़ का, वो है उसकी आदत, वो ऐसे ही बना है, वो ये काम करने के लिए ही बना है, है ना। अब जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का काम है हिसाब रखना, ऐसे ही माइंड का काम है हिसाब रखना। पर दिक्कत क्या हो गई है, क्या दिक्कत है, कि मैं जो आत्मन हूँ, जो शुद्ध हूँ, मैंने अपने आप को ये मन मान लिया है, है ना, बस ये दिक्कत है, इतनी सी दिक्कत है, और कुछ दिक्कत नहीं है। फिर वो आगे कह रही है, वर्ल्डली लव इज कंडीशनल, योर सोल मेट्स आर एक्चुअली सोल मेट्स। यहाँ पे उन्होंने स्पेलिंग चेंज कर दी है, SOUL की जगह वो SOLE बोल रही है, SOLE मतलब पंजो, पैरों के पंजो के मेट्स हैं, है ना। तो वो कहती हैं कि सबसे बड़ा सोलमेट कौन है, तुम खुद अपने सोलमेट, अपने ही हो जाओ बस, और किसी के नहीं होना है, अपने हो जाओ। फिर उन्होंने अपने जो एक स्वामी गुप्तानंद, जो एक वन ऑफ द उनके गुरु रहे होंगे, सबके बहुत सारे गुरु होते हैं, तो गुरु माँ के भी ये गुरु, मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली यही वाले गुरु थे या वन ऑफ द गुरुज थे। प्रेम दीदी आपको पता है क्या? उनको पता होता है, अगर पता है तो बता दो। तो यहाँ पे उन्होंने भजन गाया होगा इधर। फिर जो भी उन्होंने यहाँ पे पूरा भजन गाया है, इसमें लास्ट में वो बोला है कि स्वामी सेज परमानंद। हमारे बहुत सारे आते हैं ना ऐसे, जैसे कहत कबीर, तो इसमें कुछ है कहत परमानंद। तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि लास्ट लाइन में जिसने ये गाना लिखा है, जिसने ये भजन लिखा है, उसका नाम आ गया कि वो स्वामी परमानंद हैं। और फिर वो कहती हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है जिसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए उसको क्रेडिट देना। मतलब इस संसार में, जब हम इस संसार की बात कर रहे हैं ना, वी शुड नेवर फॉरगेट दोज हु हैव गिवन अस समथिंग इन द लाइफ, स्पेशली दोज हु हैव इम्पार्टेड नॉलेज टू यू, बी इट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, साइंस, लिटरेचर, मैथ्स, और इवन स्किल्स लाइक ड्राइविंग, कुकिंग। ऑलवेज बी इंडेब्टेड टू योर टीचर्स, बी थैंकफुल टू देम, रिमेंबर देम विद रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड। वाई वाई डू वी नीड टू डू दैट? क्यों हमें करना है? क्यों हमें जिनसे हमने सीखा है उनको याद करना है और उनके प्रति कृतज्ञता रखनी है? क्योंकि जिसके बारे में हम, जब हम ऐसा ग्रैटिट्यूड रखते हैं, तो उनके जो स्वभाव होता है, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनके जो गुण होते हैं, वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं उनसे कनेक्ट होने से। और फिर वो कहती हैं कि अगर हम उन्हें ऑनर नहीं करते तो हमारा जो भी हमने सीखा होता है, दैट गोज डाउन द ड्रेन। और नेवर, एंड अनदर थिंग इज, नेवर बिकम ईगोटिस्टिक ऑफ योर नॉलेज। कभी भी अहंकार मत लेकर आओ अपने ज्ञान का, क्योंकि वही तुम्हारे वही तुम्हें नीचर लेके जाएगा। जैसे हम रावण की बात करते हैं, रावण से ज़्यादा नॉलेजेबल ज्ञानी कोई भी नहीं हुआ आज तक। सबसे बड़ा ज्ञानी जो था वो रावण था हर चीज़, लेकिन फिर भी रावण को क्यों असुरों में, राक्षसों में, महाराक्षस की उसमें गिना जाता है? सिर्फ अहंकार की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहंकार था रावण में। तो सारा ज्ञान होते हुए भी वो असुर प्रकृति में माने जाते हैं। और एक और चीज़ है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी, कभी भी नहीं माना इस बात को आखिर तक। इवन व्हेन ही वाज डाइंग ही डिड नॉट एग्री टू दिस, तो इसीलिए उनको असुर उसमें माना जाता है। देन शी सेज, यू मे फॉरगेट द वर्ल्ड बट नेवर फॉरगेट योर गुरु। व्हाट हैज द वर्ल्ड गिवन यू एनीवे? मे बी सम हेल्प हेयर एंड देयर, what more can the world possibly give? Guru's grace gives you the gyan, the highest possible knowledge, and this gyan gives you moksha, liberation, which is the sole purpose of human life. Fir wo keh rahi hain, for those who say we don't want liberation, hai na, kuch log bolte hain are hame nahi chahiye moksha, kya karna hai? Aur main, I'm sure aap logon ko bhi jante honge, are moksha ye kya hota hai, enjoy karo life jiyo, तो वो तो बहुत कितने अच्छे से बोल रही हैं। वो कह रही हैं तो क्या हुआ, ठीक है, रोज़ हज़ारों मच्छर मरते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं लेना है तो मत लो, है ना। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ लाइफ एज इनकॉन्सिक्वेंशियल एज दैट ऑफ अ मॉस्किटो, सो बी इट, इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। मास्टर्स कैन ओनली शो यू द गोल एंड देन इट्स अप टू यू वेदर यू वॉन्ट टू ट्रेड और नॉट, है ना। गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, बता सकता है, जगा दे सकता है। अब आपको जगना है या नहीं जगना, आगे चलना है या नहीं चलना, ये तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। और फिर वो बताती हैं कि ओनली एन एनलाइटेंड मास्टर कैन लव यू अनकंडीशनली। और ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है कि सिर्फ एक जो अनकंडीशनल रिश्ता होता है, एक गुरु के अलावा किसी के साथ भी नहीं होता, नॉट इवन विद योर मदर। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी अनकंडीशनल नहीं होता। आप चाहो तो सोच लेना इसके बारे में, कि हमको लगता है हाँ, बाकी सब रिश्तों में, ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स एंड बच्चे का बहुत स्ट्रांग होता है, या माँ और बच्चे का हम बोलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा, जिसको बोलेंगे हम क्या, सेल्फलेस होता है। लेकिन गुरु और शिष्य से ज़्यादा सेल्फलेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माँ को फिर भी, अगर वो बच्चे के लिए करती है, क्योंकि वो माइंड से सोच रही है ना, माइंड आ गया फिर से, माइंड से, बॉडी से माँ है, माइंड से माँ है, बॉडी और माइंड की वजह से ही तो रिश्ता बना है ना। और माइंड प्योर हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी, कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस रहती है। लेकिन गुरु क्योंकि माइंड एंड बॉडी से रिलेटेड नहीं है, वो गुरु कहाँ पे है, वो गुरु आत्मन के लेवल पे है। क्योंकि वो आत्मन के लेवल पे है इसलिए वही रिश्ता अनकंडीशनल हो सकता है, बिना कुछ चाहे वो आपको दे सकता है। और फिर उन्होंने क्या बताया कि वो क्यों अनकंडीशनली दे रहा है जो गुरु है। बिकॉज अ ज्ञानी सीज हिमसेल्फ इन यू, सीज हिमसेल्फ इन एवरी सेंशिएंट बीइंग, देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ बिफ्रेंडिंग और हेटिंग एनीवन। जब आत्मन के लेवल पे हो गया, जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी ये बात की थी कि जब आप आत्मन हो जाते हो तो आप अपने बच्चों को भी आत्मन ही देखते हो, है ना। आप उनको उसके बाद ये नहीं देखते कि ये मेरा बच्चा है मुझे इसका ध्यान रखना है, तो आपकी नज़र ही बदल जाती है, आपकी दृष्टि बदल जाती है। इसी तरह से जो गुरु है वो आपको एज अ बॉडी एंड माइंड नहीं देखता है, वो आपको एक दूसरा आत्मन ही देख रहा है। क्योंकि जो आत्मन में चला गया उसको दूसरे को आत्मन ही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। यहाँ पे ना मुझे एक किस्सा वो याद आता है, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, जब अष्टावक्र को राजा जनक की सभा में बुलाया गया था, पहली बार गए थे जब अष्टावक्र, तो आपको पता है कि अष्टावक्र सब आठों जगह से टेढ़े थे, है ना, उनके पूरा टेढ़े मेढ़े थे, मतलब ही वॉज एक तरह से बोल सकते हो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हम बोल सकते हैं उनको वो थे। तो जब वो गए तो सब लोग उनको देख के हंसने लगे, मतलब इतने टेढ़ा मेढ़ा उनका शरीर था सारे, और कौन सारे लोग, जो विद्वान। तो राजा जनक ने बहुत सारे विद्वानों की सभा बुलाई थी वहाँ पे कि सब विद्वान आए, और विद्वान क्या आए, क्योंकि उनका एक सवाल था जो मैंने आप लोगों के साथ स्टोरी पहले भी शेयर की हुई है कि उन्होंने एक स्वप्न देखा था जिसमें वो बिल्कुल हार गए थे और भिखमंगे हो गए थे, और उनका स्वप्न सवाल ये था कि वो सच था या ये सच है, वो भिखमंगा राजा जनक का स्वप्न देख रहा है या राजा जनक भिखमंगे का स्वप्न देख रहे थे, है ना, ये प्रश्न था। उसके लिए उन्होंने ज्ञानियों को बुलाया था। तो जब अष्टावक्र घुसे उस सभा में तो सब हंसने लगे, तो अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगे उनके साथ साथ। तो जब अष्टावक्र हंसने लगे तो सब लोग चुप हो गए, राजा जनक भी बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने उनको पूछा, उन्होंने बोला अरे, और राजा जनक ने उनको उतर के अपने सिंहासन से उतर के प्रणाम किया और उनको बोला कि ये लोग तो हंस रहे हैं पर आप क्यों हंस रहे हैं। कहते मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आपने चमारों की सभा बुलाई है। कहते चमारों की सभा, अभी तो सब लोग बड़े ही ना गुस्से में हो गए कि हम तो इतने विद्वान हैं हमें चमार बोला जा रहा है। तो कहते हाँ चमारों की सभा ही तो है। कहते ये लोग मेरे शरीर को देख के हंस रहे हैं, इसका मतलब है ये अभी भी शरीर के तल पर ही देख रहे हैं मुझे, है ना, क्योंकि जो सही विद्वान है वो कहाँ देखता, वो उसको शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो आत्मन के लेवल पर देखता। तो तुम अगर मुझे अभी भी शरीर देख रहे हो और हंस रहे हो तो तुम विद्वान कैसे हुए, तुम तो चमारी हुए ना। तो देखो इससे में हमें एक और चीज़ पता लगती है जो सोशल लेवल पे बड़ी काम आती है, और साइकोलॉजी क्या होती है, यही होती है कि लोग आपको क्या देखकर जज करते हैं, है ना, आपके कपड़े देखकर जज करते हैं, आपकी ज्वेलरी देखकर जज करते हैं, आप कितना, कुछ लोग आपका सिर्फ शरीर का बनावट देख के जज करते हैं कि तुम मोटे हो कि पतले हो, कि सुंदर हो कि तुम कुरूप हो या एवरेज हो, आपको पता ही है। जैसे उस दिन अपर्णा बोल रही थी ना कि वो सोसाइटी में जब भी नीचे उतरे तो यही होता है कि अरे लोग आजकल क्या कर रहे हो पतला होने के लिए, देयर इज ओनली वन कॉन्वर्सेशन, राइट। तो इससे पता लगता है कि आप किस लेवल पे हो, आप किस, आपका स्केल क्या है जजमेंट का, है ना। आप उनके कपड़ों पर जज कर रहे हो या शरीर पर जज कर रहे हो या उनकी बातों पर जज कर रहे हो, क्या है, विच स्केल आर यू यूजिंग, है ना, आप नाप किस पर रहे हो दूसरों को। तो जब दूसरे लोग बातें करते हैं उससे हमें क्या पता लगता है, हमें उनके बारे में पता लगता है। सपोज़ अगर ए बी के बारे में बात कर रहा है तो क्या हमें उसके, उसकी बातों से बी के बारे में ज्ञान होता है, नहीं, हमें ए के बारे में ही ज्ञान होता है। समझे आप इस बात को, जब भी हम किसी दूसरे की बात करते हैं, सपोज़ मैं एक किसी के बारे में बात करूँ आप लोगों से, आपको लगेगा कि आपको उसके बारे में पता लग रहा है, अगर आपको, अगर बुद्धि कम है तो आपको लगेगा उसके बारे में पता लग रहा है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि तेज है तो आप समझ पाओगे आपको मेरे बारे में पता लग रहा है, मैं जो भी बात करती हूँ उससे आपको मेरे बारे में आप उसको जज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई सबको, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। तो वो यही बोल रही हैं कि क्यों गुरु तुमको अनकंडीशनली दे पाता है, क्योंकि वो तुम्हें मन और शरीर से नहीं नाप रहा है, उसका स्केल वहाँ पे नहीं है, वो तुमको आत्मन ही जान रहा है, तुम्हें आत्मन देख कर ही कर रहा है, इसलिए अनकंडीशनल है। ठीक है
मोनिका, हाँ जी, बट लाइक जैसे कोई क्रूएल होता है या कुछ है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जजमेंट आ जाता है कि यू नो लाइक दिस पर्सन इज लाइक उसने ऐसा काम क्यों किया, ये ऐसे कैसे कर सकता है। सो देन आई डोंट नो देन अगेन माइंड के लेवल पे है बट देन यू कैन सी दैट या सो देन हाउ डज इट गो लाइक हाउ विल यू नॉट जज।
श्योर श्योर। सो अगर आप देखो, आप जैसे जैसे आप इसमें ज़्यादा जाते जाओगे आपको एक्चुअली रियलाइज़ होगा कि हाँ वो माइंड के लेवल पे है, वो जो जजमेंट्स भी आ रहे हैं वो भी कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये एक एक इंसान का नहीं होता, इट्स अ कल्चरल थिंग। कोई भी जो जजमेंट करी जाती है, चाहे हम एक बोले कि उसने ये ऐसा बोला, करेक्ट, अगर हम जज कर भी रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली एट अ कल्चरल लेवल। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई, सपोज मैं भी कुछ बोलती हूँ, अगर मैं किसी को जज कर रही हूँ, ठीक है, और आप मुझे देख रहे हो, इससे एक और चीज़ पता लगती है कि मेरा समाज कैसा है, मेरे फ्रेंड्स किस तरह के हैं, मैं किस तरह के लोगों के साथ रहती हूँ, बात करती हूँ, क्या पढ़ती हूँ। तो ये एक इंसान का नहीं होता। और जब आप समझते हो कि कोई चीज़ कल्चरल इशू है, देन यू डोंट जज द पर्सन, यू जस्ट अंडरस्टैंड। एटलीस्ट आप क्या करते हो, दूसरे लोग जज कर रहे हैं, आपके जजमेंट आ भी रही है, आप उसी समय उसके साथ डील कर पाते हो, उसको रखते नहीं हो अपने दिमाग में एक जजमेंट को, समझ रहे हो इस चीज़ को, यू डोंट कीप दैट जजमेंट। हाँ माइंड और बॉडी के लेवल पे कुछ थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। यू एक्चुअली स्टॉप जजिंग पीपल फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, इट हैपन्स। आई एम श्योर यू वुड हैव ऑलरेडी सीन दैट डिफरेंस इन यू शिवानी, कि जैसे पहले बहुत सारे लोग पहले 100 चीज़ों पे जज करते होंगे, अभी 10 हो गई होगी, है ना। तो
क्योंकि
सब चीजें तो माइंड के इस लेवल पे ही हो रही है ना, तो माइंड का तो अपनी जर्नी है, माइंड विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, बट as long as you can see that there is progress, those things are reducing, that is fine. और फिर क्या है, बस आपको पता है कि वो ऐसे हैं, आप छोड़ दोगे, मतलब आप उसके आगे, कई बार क्या होता है लोगों का, जैसे जो नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं जाऊँ तो लोगों का एक होता है अरे वो ऐसा है, उसको बदलना है, उसको बदलना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग इस चक्कर में भी पड़ जाते हैं। तो वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, यू जस्ट लीव देम टू इट, वो जब होगा होगा, उनका समाज है, उनकी थॉट्स हैं, वो हैं, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है उनके बारे में कि वो कैसे लोग हैं और आपको उनके साथ आगे रखना है या नहीं रखना। अब जब मैं आप बात कर रही हूँ, आप भी तो एक माइंड एंड बॉडी भी हो, है ना, एक बॉडी एंड माइंड आपका है जो एक तरीके से सोचता है, जो एक तरीके से कुछ एनवायरनमेंट को पसंद करता है। तो यहीं पर हम फिर ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं या हम समझने लग जाए वो इन्हीं चीज़ में है, तो नेचुरली हम उनके साथ डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं, हम उनके साथ एंटैंगल नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें ब्लेम कर रहे हैं या हम उन्हें छोटा समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, बस वो अब उनका ये सोचने का तरीका है, तो हमें उनके साथ नहीं अब अटैच होना, दैट्स ऑल।
मोनिका, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग।
श्योर।
कि जैसे भी बोला कि किसी का हमको, जैसे कई बार ऐसा होता है, तब को लगता है कि इस व्यक्ति को अगर हम बोलेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, और कई बार ऐसा लगता है कि बोलना चाहिए भी, मतलब मुझे कई बार ऐसा लग जाता है कि बोलना चाहिए इस व्यक्ति को, अगर नहीं बोलेंगे तो ये हर किसी के साथ ऐसा ही आता जाएगा, उसको तो पता ही नहीं है, बिकॉज वो एक आदत से भी कर रहा है। हो सकता है अगर उसको कर दिया जाए, बता दिया जाए, तो हो सकता है कि वो अपनी आदत में सुधार ले, मतलब इट कैन बी 50-50, वो ला भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो जाकर के दूसरों को बोल सकता है कि भाई ये देखो ये तो बहुत ज्यादा अपने आप को समझती है, या व्हाटएवर इट इज,
राइट,
ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों तरीके से है।
बिल्कुल।
तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि किसी में अगर ऐसा है जिसके हमारे बोलने से अगर वो व्यक्ति समझ जाए तो बोल देना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है रेनू, बहुत कुछ लोग होते हैं, और जैसे अब अगर हम यहाँ पे भी ये सेशंस ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये लोग जो भी हमें लगा होगा जब हमने शुरू भी किया कि हाँ मतलब ये लोग हैं जो इंटरेस्टेड, किसी को देख के आपको लगेगा, किसी को देख के आपको पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, सो दैट्स अ कॉल वी ऑलवेज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक यू नो अनटिल मेनी टाइम्स द मोमेंट वी लर्न समथिंग, हमने कुछ सीखा, हमें लगता है अरे यार उसको भी बता दो, उसको करा दो, उसको बदल दो, ये बहुत ज़्यादा एक आदत होती है, जबकि दूसरे इंसान में, जैसे मैं खुद ही जानती हूँ कि कुछ लोग होते हैं बोलते हैं अरे हमें उनको बदलना है, जबकि मैं देख रही हूँ मुझे पता है कुछ नहीं बदलने वाला उसका, है ना। तो आप देख पाते हो उन चीज़ों को, तो वो आपको हमेशा केस टू केस बेसिस कॉल लेना होगा। और ऐसा भी होगा कभी आपको लगेगा कि आप इनको बता दो, शायद इनकी ये समझ जाएं, और समझ भी जाएंगे और शायद ना भी समझेंगे, विच इज़ ओके। तो आप उतना ही एफर्ट करोगे, इट इज़ लाइक यू नो जैसे एक्सपेरिमेंट होता है ना कि वो मछली के लिए वो कांटा डालते हैं, तो आपने कांटा फेंका, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं पकड़ा तो नहीं पकड़ा, इट्स ओके, है ना। बट वी आर नॉट स्टक कि अच्छा नहीं तुम नहीं समझे, नहीं अब तो हम तुम्हें समझाएंगे बिठा के, है ना। जबरदस्ती उसमें नहीं पड़ते हैं।
प्रॉब्लम है, सब समझ जाते हैं, दे थिंक भी हमें सब पता है, बट यही जब एक्ट करने का आता है देन दे आर नॉट एबल टू एक्ट।
एब्सोल्युटली यू आर राइट, दैट इज सी दैट इज द थिंग ना, ये बात तो है ही शिवानी, सबको लगता है जो हम कर रहे हैं वो सबसे सही है, सबको यही लगता है। अगर उन्हें लगता होता कहीं ना कहीं कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है या कुछ और है या हम नहीं जानते, तो फिर ऐसा होता ही नहीं ना। बात तो यही है, सबसे पहले तो यही जानना है कि मैं नहीं जानती, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो वो आपको ईगो, देखो ईगो जो है वो क्या कर रही है, वो कभी आपको लाने ही नहीं देगी उस लेवल पे कि मैं नहीं जानती, क्योंकि जैसे ही वो आ जाता है मैं नहीं जानती, तो क्या होता है, लोग कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, परेशानी होती है, आपका जो आपने जो अपनी एक इमेज बनाई हुई है उसको टक्कर लगती है, तो आप उस रास्ते जाना ही नहीं चाहते, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। अनलेस अगेन, या तो आप ऐसी कंपनी में आ जाएं जहाँ पे आप समझ सकें मिलके, कुछ वैसा हो, या फिर वही होता है कि या बहुत बड़ी सफरिंग आए जब आपको लगे कि नहीं अब यहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा, कुछ है जो मुझे नहीं पता जो मुझे जानना है, तो ज़्यादातर इन तरीकों से फिर वो आते हैं, मोस्टली ऐसे ही होता है, नहीं तो नहीं आते, ईगो नहीं आने देती। सबसे बड़ा जो हमारा मन का भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, ईगो, जबकि ईगो भी हमें सर्वाइवल के लिए दी गई है। देखो ईगो का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, उसको प्रोटेक्ट करना है इस शरीर और मन को, ईगो नहीं होगी तो इसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है, सिर्फ हम प्रोटेक्शन लेवल पे रहते नहीं हैं, हमने हर चीज़ पे ईगो को ही रेंज पकड़ा दिए अपने। फिर उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में एक और चीज़ बोली है कि एक तो पहले बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें गुरु के शब्द, गुरु का अमृत सुनने को मिलता है, और फिर उससे भी कम होते हैं जो उन पे एक्ट करते हैं, जो उन पे कार्य करते हैं। ज़्यादातर लोग किस में रह जाते हैं कि अरे मेरे गुरु तो बहुत ग्रेट है, उनको सब कुछ आता है, हम गुरु पूजा बस गुरु गुरु करेंगे, लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं वो जो बोला जा रहा है, वो जो साधना करने को बोल रहे हैं वो सब नहीं करेंगे, है ना ये। और जैसे बहुत सारे लोग, एक और इस चक्कर में गुरुओं का नाम भी बहुत ख़राब होता है, वो बोलेंगे अच्छा इनके गुरु हैं वो हैं, ये तो फिर भी वैसे के वैसे ही हैं, है ना। तो क्यों आपने गुरु कहने को बाहर से, मतलब वो भी एक तरह से आपने एक फैशन वो हो गया कि एक ज्वेलरी पहन लिया कि मेरे गुरु हैं, उससे क्या होगा, जब तक आप बात नहीं मानोगे कार्य नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो फिर उन्होंने अगले उसमें बोला है, द बेस्ट ट्रिब्यूट यू कैन गिव टू योर मास्टर इज दैट यू बिकम एलिजिबल टू रिसीव द टीचिंग्स, दिस इज द प्रूफ ऑफ योर लव फॉर योर मास्टर, है ना। एलिजिबल टू रिसीव द टीचिंग्स मतलब फिर से वो साधक के गुण, आपके अंदर वो गुण हैं। और फिर नॉट ओनली, यही नहीं कि आप उस ज्ञान को ले पाओ बल्कि आप उस ज्ञान को आगे दे भी पाओ, वो सबसे बड़ा, दैट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट टू योर मास्टर।
मतलब आपको जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको गुरु की प्राप्ति होगी, अगर आपके कर्म नहीं अच्छे तो गुरु भी आपको कहां से।
हाँ तो ये एक चीज है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे हमें तो गुरु ही नहीं मिले, हमारी तो लाइफ वेस्ट हो गई, है ना। तो पहले क्या बोल रही है कि पहले तो गुरु मिलना, फिर गुरु के शब्द सुनने, फिर उनको जीवन में उतारना, और फिर अगर बोल रहे हैं कि गुरु ही नहीं मिले, इसका मतलब कि तुमने ऐसे अच्छे कर्म किए ही नहीं हैं, ऐसे संस्कार ही नहीं तुम्हारे अंदर हैं कि तुमको कोई, मतलब कैसे कर्म नहीं करे हैं, इफ़ यू हैव नेवर शोन एनी काइंडनेस, एनी बेनिफैक्शन, एनी चैरिटी, अगर तुमने बहुत चोरी की है, झूठ बोला है, तो तुम्हें कैसे गुरु मिलेंगे। अब देखो इसको हम एक और तरीके से भी समझते हैं। ये जो चीज़ है, अगर हम यहाँ पे कर्मा का स्पेशली जैसे आ रहा है, जैसे अभी रेनू ने पूछा कि कोई लोग को लगता है कि हम बता दें, है ना। अब ये जो चीज़ आती है कि किसी को लगेगा कि बता दो और किसी को देख के ही क्लियर हो जाएगा कि इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। ये तो हमें क्लियर है, एटलीस्ट वी नो सर्टेन पीपल, हमें पता है कि उनको बोल के भी कुछ नहीं होने वाला। तो हम बोल ही नहीं रहे हैं, हम उनको बता ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे? तो इसका मतलब है कि अगेन समवेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग कि वो अभी तक उस चीज़ के लिए खुले ही नहीं हैं। और वो क्यों नहीं खुले हैं, इसका मतलब उनके जो संस्कार हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनका जो अभी अट्रैक्शंस हैं, वो एक अलग लेवल पे हैं, है ना। अगर हम उसको लोअर लेवल बोले, या मतलब अगर सपोज कोई चोर उचक्के टेररिस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, लेट्स फॉरगेट दैट। यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया ना चोरी की है और ये सब किया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी संसार में ही इतने लिप्त हैं, जो हमेशा साड़ियाँ और पार्टीज और ज्वेलरी और कहाँ पे ट्रैवल करना है उसी की ही बातें होती हैं। आई एम श्योर आप लोग सब जानते होंगे आसपास में सोसाइटीज़ में ऐसे लोग होते हैं। आपको पता है इनको ये अध्यात्म की बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, है ना। तो वो अब ये क्या है, ये क्या कर्मा है या क्या है? कर्मा अगेन थोड़ा हेवी हो जाता है अगर मैं इस चीज़ को लेती हूँ। यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं कि उनकी अभी जो फोकस है लाइफ का वो और चीज़ों पे है, और एक्शंस पे है। तो हम देख भी रहे हैं तो भी हम उनको नहीं बता रहे हैं। तो फिर से क्या मतलब है कि गुरु हमेशा प्रेजेंट है, गुरुज भी हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं है, लेकिन गुरु देख पाता है कि इसको बताने का फ़ायदा है और इसको बताने का फ़ायदा ही नहीं है। तो गुरु कभी आप पे टाइम नहीं वेस्ट करेगा, गुरु इज़ नॉट वेस्टिंग टाइम, कि जो है जिसका जब होगा और जब वो तैयार होगा तो वहाँ पे भी कोई ना कोई गुरु मिल ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए गुरु, अगर बोल रहे हैं कि गुरु नहीं मिले हैं तो गुरु तो हैं, ऐसा नहीं है गुरु नहीं है, आप ही ओपन ही नहीं हो उस गुरु के लिए, यू आर नॉट ओपन ओनली। इसकी मुझे ना एक और अभी स्टोरी, बहुत सारी स्टोरीज आ जाती हैं, एक का एक, एक से एक बात निकलती है ना। तो कहते हैं एक बार एक ऐसे ही एक गुरु जा रहे थे एक नगर में, पहले तो था कि नगर में एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक गेट के ऊपर एक आदमी बैठा होता है। तो नहीं 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 सॉरी, एक आदमी आता है नगर के गेट पे, ऐसा होता है कि समझो एक पूरा का पूरा नगर है, मतलब एक प्लेस है, तो वहाँ पे वो आता है, वो कहता है कि बाहर उस गेट पे एक आदमी और बैठा होता है। तो उसको वो पूछता है आप इस नगर के हैं? तो उसने बोला कि अब बताइए आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? कहते मैंने सुना है कि इस नगर में एक बहुत बड़े गुरु रहते हैं और मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ, बहुत दूर से चल के आया हूँ, तो आपने सुना है यहाँ पे रहते हैं क्या? कहते सुना तो मैंने भी है। कहते अच्छा ठीक है, कहते मैं जाके उन्हें ढूंढता हूँ, आपको पता है क्या रहते हैं? तो बोला नहीं जाइए देखिए ढूंढिए। तो वो चला जाता है अंदर। उसके बाद वो 15 साल बाद फिर से वो बाहर आता है आदमी, वो नगर से 15 साल के बाद, ओके, फिर ये बाहर बैठा होता है आदमी, वही आदमी बैठा होता है। तो आके उसको नमस्कार करता है, कहते हैं कि आपको वो क्या रहा? कहते नहीं मुझे पता लगा कि वो जो गुरु हैं वो बाहर ही रहते हैं, वो नगर के द्वार पे बैठे रहते हैं। तो बोलता है अच्छा ठीक है आ जाओ बैठ जाओ, और फिर वो उसको दीक्षा देता है। तो वही गुरु होता है। तो बोलता है लेकिन जब मैंने 15 साल पहले गया था यहीं से तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने बोला तुम तैयार नहीं थे। कहता आप ही से तो पूछा था, आप ही बैठे हुए थे ना, तो आपने तब नहीं मुझे दीक्षा दी। उसने बोला तुम तैयार नहीं थे तभी, है ना। तो और कुछ नहीं है। 15 साल बाद धक्के खाने के बाद वो तैयार हो गया। तो ये बात समझ में आई कि कैसे हमें अगर गुरु नहीं मिलते तो क्यों नहीं मिलते, है ना।
मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे गुड रिसेप्टर जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी लोग होंगे सब प्रयासरत होंगे कि गुरु कृपा उन्हें मिले और वो अच्छी चीज को जाने, लेकिन आपने कहा ना कि आप देख के ही आपको समझ में आता है कि किसी पे भाई मेहनत करनी बेकार है और किसी पे है, लेकिन चाहत तो सबकी ही ये है ना कि हम गुरु कृपा प्राप्त करें। तो कहाँ कमी रह जाती है, किस चीज में कमी रह जाती है?
बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहली बात तो अगर हम बोलते हैं कि चाह सबकी है कि गुरु कृपा हो जाए, लगता है ऐसा होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है, है ना। तो हमें लगता है कि हमें गुरु कृपा चाहिए। अच्छा गुरु कृपा भी क्यों चाहिए? गुरु कृपा एक होती है कि जो गुरु देना चाहे, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे नहीं काम करता। हमें गुरु कृपा क्या चाहिए, वो भी हमें ज़्यादातर सांसारिक दृष्टि में ही हमें लगता है कि हो जाए, कि मेरे जो संसार की प्रॉब्लम्स हैं, गुरु कृपा का मतलब है संसार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। फिर दूसरा क्या हो सकता है, चलिए आप सत्संग में आ भी गए, आपको ये भी समझ में आ गया कि संसार से कुछ नहीं होने वाला, आत्मन से होने वाला है ना। तो अब आप क्या चाहोगे, अब आप चाहते हो गुरु कुछ ऐसा जादू है कि आपको आत्मन, सीधा आपको आत्मन नजर आ जाए, है ना। और आपको कुछ, है ना, ये गुरु कृपा।
सही बात है।
देखो गुरु कृपा, अगर गुरु आपको कुछ भी सिखा रहा है, ए बी सी भी सिखा रहा है, तो वो गुरु कृपा ही हो रही है ना। गुरु कृपा तो चालू ही है, आप जैसे इस रास्ते पे आए हो वो गुरु कृपा शुरू हो गई है ना। अब वही है जैसे एक बच्चा है, वो पीएचडी करना चाहता है, अभी वो छोटा है, 4 साल का है, अभी शुरू तो ए बी सी से ही करेगा ना, ए बी सी, उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप वो सीधा नहीं, वो बोलेगा अरे नहीं मुझे तो मेरे गुरु सिखा ही नहीं रहे, पीएचडी नहीं करा रहे। अरे पीएचडी तो बाद में होगी ना, तुम कृपा तो शुरू हो चुकी है ना?
सही नहीं नहीं समझ। जो गुरु चाहे की भी आप बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए करते, क्योंकि इतना सुनते हैं गुरु गुरु गुरु, तो उनको लगता है हमारा भी गुरु होना चाहिए, गुरु एक स्टेटस सिंबल की तरह काम करता है।
नहीं नहीं नो, मन मन का आराम, मन की शांति, जीवन का ठहराव सबको चाहिए, सबको, मतलब वो कैसे लें और कैसे कर पाए, कोशिश हर आदमी कर रहा है लेकिन मिलता नहीं।
आपको लगता है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, आप गुरु की चाह है आपको, तो आपको लगता है सबको है, जैसे हमें या मोनिका को ऐसा
नहीं
लगता
है। मुझे
सबको सिखाए, सबको सिखाए,
इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग होंगे निश्चित थोड़ा सा, मतलब वही मोनिका ने जैसे कहा भी केजी नर्सरी में होंगे, लेकिन इस संसार की ये साड़ी और उससे ऊपर ही होंगे, डेफिनेट ऊपर होंगे, तभी यहाँ पे 1.5 घंटे मन लगता है या एक वेट रहता है कि आए नहीं, कोई भी काम है तो उसको नहीं करें, इसको सुन ले, कुछ भी नहीं होता उससे। सच बात ये कह रही है कि आप रिसेप्टर बहुत अच्छे नहीं है, रिटेन नहीं हो पाता है, 2 मिनट में भूल जाते हैं, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ, बट जितनी देर सुनते हैं वो बहुत अच्छा जो है महसूस तो करते हैं उस चीज को, और जब बार 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 वही करत करत अभ्यास के महसूस करते 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 कभी ना कभी हो सकता है कि वो निशान पड़े, ऐसा ही हो सकता है मुझे लगता है।
ठीक है, देखिए गुरु कृपा हो ही रही है, और बाकी जो वैसे हम रेडी नहीं होते गुरु कृपा के लिए,
नहीं
इन द सेंस, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स कभी कभी लेने पड़ते हैं, उसके लिए हमारा मन और जो शरीर और बुद्धि तैयार नहीं होती। हमारे गुरु जी ना एक और चीज बहुत बार बोलते थे, कहते देखो लाखों करोड़ों लोग रोज मंदिर में जाते हैं, है ना, अगर हम एक हिसाब लगाएं, जा ही रहे होंगे रोज लाखों करोड़ों लोग मंदिर में, कहते सोचो चलो हम तिरुपति लेते हैं, तिरुपति में इतने लोग आते हैं, कहते एक दिन इमेजिन करो 1 लाख लोग आए हुए हैं और तिरुपति जी उस दिन खड़े हो जाए वहां पे और बोले चलो सबके सब मेरे साथ, आज आज मैं सबके ऊपर कृपा कर रहा हूँ, चलो मेरे लोग अभी के अभी मैं तुम्हें वैकुंठ लेके जा रहा हूँ, कहते एक भी वहां पे लोग नहीं दिखेगा, सब भाग जाएंगे, सब के सब भाग जाएंगे।